मेरे अजीज नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 12 दिसंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मीनाक्षी राठौर, आप कोटा राजस्थान से हैं, और मोना यादव, आपका गांव है शेरपुर, जिला अलवर, आप भी राजस्थान से हैं। तो मीनाक्षी और मोना, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबका स्वागत करने के बाद मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा वेंकटेश पटेल को जो हिम्मतनगर गुजरात के रहने वाले हैं, हमारे 4th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने बड़े उमंग के साथ लिखा है कि गुजरात के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं उसका प्री क्वालिफाई कर लिया है। तो वेंकटेश इसके लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और आप आगे के इसी परीक्षा के जो चरण होते हैं उनमें भी सफलता प्राप्त करें इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। दोस्तों एक छोटी सी सूचना है और सूचना ये कि अभी चुनाव से पहले आपने देखा कि बहुत से जो सिविल सर्वेंट थे उसमें आईएएस के लोग भी थे, आईपीएस के लोग भी थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग भी थे, इन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया और बकायदे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की और उनमें से कुछ लोगों ने बकायदे चुनाव भी लड़े। ये अभी आपने ये खबरें अखबारों में पढ़ी होंगी। इसी को आधार बना करके मैंने एक ब्लॉग लिखा है जो जी न्यूज के ब्लॉग पर अवेलेबल है, जी न्यूज के ब्लॉग पर है। उसका टाइटल कुछ इस तरीके से है कि किस तरीके से जो नागरिक सेवक है, जन सेवक है, वे जन प्रतिनिधि की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। मतलब है तो वो नागरिक सेवक लेकिन अब वो जन प्रतिनिधि बनने की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या किया जाना चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वो आर्टिकल ब्लॉग वहां पढ़ सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरे और भी ब्लॉग आते रहते हैं लेकिन मैं केवल उन्हीं की अब सूचना आप सबको देता हूं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आप इसे देख लेंगे, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। फ्रेंड्स अब मुख्य विषय के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बात करेंगे, अभी चुनाव परिणाम आ गए हैं, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव को हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखेंगे कि हमारे लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा कि शक्तिकांत दास जी को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया है। उर्जित पटेल जी ने एक दिन पहले ही, मतलब आज की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया था और डेफिनेटली रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद को आप खाली नहीं रख सकते। चाहे तो आप डिप्टी गवर्नर को उनका चार्ज दे दीजिए, कुछ समय के लिए कार्यकारी गवर्नर बना दीजिए या फिर गवर्नर अपॉइंट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और क्यों महत्वपूर्ण पद है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया, शक्तिकांत दास जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं 1980 बैच के, और हमारे वो वित्त सचिव रहे हैं, अभी जो हमारा वित्त आयोग है उसके वो सदस्य थे, 3 साल का उनका कार्यकाल होगा। यहां जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति है, याद रखिए वो एक मंत्रिमंडल की एक नियुक्ति समिति होती है। मंत्रिमंडल की कुछ समितियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं, आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस की किताब में या कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में जाकर के उसे देख भी सकते हैं। तो उसकी एक जो नियुक्ति समिति होती है उन्होंने शक्तिकांत दास जी को अपॉइंट किया है। सिविल सर्विस की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए और वो ये कि घटनाएं अपनी जगह होती हैं लेकिन उन घटनाओं से प्रश्न क्या बनते हैं या क्या सवाल खड़े होते हैं। जैसे एक सवाल यहां आपके दिमाग में खड़ा हो सकता है या नहीं भी हो रहा होगा, तो इसे आप तथ्य के रूप में किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत उपयोग में ला सकते हैं। और वो ये कि देखिए जो रिजर्व बैंक कि गवर्नर का पद है वो बेसिकली एक विशेषज्ञ का पद है, तो बहुत ही जाना माना इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, बहुत मतलब उच्च स्तरीय अर्थशास्त्री होना चाहिए। वहां हम अगर किसी आईएएस को अपॉइंट करते हैं तो स्वाभाविक है कि वह एक सामान्यज्ञ है, जनरलिस्ट है, सामान्य है, सामान्य है, वो प्रशासन के तौर तरीके जानता है, अर्थशास्त्री नहीं है। दूसरी बात कि शक्तिकांत दास जी हिस्ट्री से एमए हैं, तो ऐसा भी नहीं कि अर्थशास्त्र उनका विषय रहा हो। तो ऐसी स्थिति में एक जो प्रश्न खड़ा होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि किस इस तरह के सामान्यज्ञ व्यक्ति को, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, विशिष्ट जानकारी वाले पद पर नियुक्त करना कितना अधिक कितना हितकारी होगा या कितना सही होगा। हितकारी को तो छोड़ दीजिए, आप कह लीजिए कि कितना सही होगा। जहां तक आईएएस का सवाल है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इससे पहले इस तरह की नियुक्तियां नहीं हुई, इससे पहले भी आईएएस की नियुक्ति हुई है, जो डेफिनेटली नियुक्ति के पीछे जरूर है कि जैसे आप अभी शक्तिकांत दास जी हैं वो हमारे वित्त सचिव रहे हैं, और वित्त सचिव रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, है ना, वो भी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की किस नीतियां और उन सबको देख रहे हैं, तो एक अनुभव तो हो जाता है। हो सकता है कि इससे पहले भी वो वित्त का काम उन्होंने देखा हो जब वो स्टेट में थे, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न एक खड़ा होता है और इस पर आप अपने ढंग से भी विचार कर सकते हैं। मित्रों, एक जो दूसरी खबर अखबारों में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो दुष्कर्म के मामलों में जो पीड़ित होते हैं या जो जिनका यौन उत्पीड़न होता है, उनका नाम या कह लीजिए उनकी पहचान किसी भी हालत में सामने नहीं लाई जानी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि कोर्ट में भी आप बंद लिफाफे में उनके बारे में जानकारी दीजिए, उनका नाम। यहां तक कोर्ट ने कहा कि अगर फैमिली वाले कहते हैं कि ठीक है आप नाम बता दीजिए, तब भी उनके नाम नहीं बताए जाने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण आप कह लीजिए कि स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, जहां महिला अधिकार या इस तरह के मामले आते हैं वहां उनके अधिकारों को किस तरह से रक्षा करने की कोशिश हो रही है जो दुष्कर्म से पीड़ित हैं या यौन उत्पीड़नों से पीड़ित हैं, वहां पर आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स, वो है येलो वेस्ट। वेस्ट का मतलब है यहां कह लीजिए जैकेट, येलो जैकेट, यानी कि ऐसे लोग जो पीले कलर की जैकेट पहने रहते हैं, येलो वेस्ट। एक ये शब्द आया है अभी आंदोलन के रूप में, एक देश में येलो वेस्ट आंदोलन हो रहा है। ये येलो वेस्ट आंदोलन क्या है, हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा हो, अगर ध्यान दिया हो तो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ये बात मैं यहां रख रहा हूं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कुछ दिनों से फ्रांस में आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग शहरों में, यहां तक कि पेरिस में भी आंदोलन हो रहे हैं, और उनके आंदोलन के पीछे जो कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वहां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, मतलब ये कह लीजिए कि वहां लगभग पेट्रोल 125 रुपए किलो हो गया है, तो उससे जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। और उत्तेजना का कारण केवल यही नहीं है कि पेट्रोल का कारण बढ़ा दिया गया है, बल्कि जब से वहां नए राष्ट्रपति आए मैक्रों, पिछले साल आए थे, वो लगभग 1.5 साल हो गए शायद उनको आए हुए, उन्होंने सरकारी खर्च में कमी करने के लिए 1,00,000 सरकारी नौकरियां भी खत्म कर दी। अर्थव्यवस्था का हालत बहुत खराब है, जबकि फ्रांस को हम बहुत अच्छा विकसित और बहुत ही दमदार, सर्वाधिक विकसित और ताकतवर देश मानते हैं, इसके बावजूद वहां की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। तो उसके खिलाफ एक विद्रोह हो रहा है, जिसे जो आंदोलन में शामिल हैं वे लोग पीले रंग की जैकेट पहनते हैं, तो उसे नाम दिया गया है येलो वेस्ट, और उनका बकायदे एक संगठन बना हुआ है, येलो वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी सिविल सर्विस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्री में, तो येलो वेस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये क्या है, राइट। मित्रों, मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जनसत्ता का, कर्ज माफी को लेकर, किसानों के कर्ज माफी, उस पर नीति आयोग ने अभी स्टेटमेंट दिया है कुछ दिनों पहले कि ये सही नीति नहीं है, क्योंकि इससे किसानों का कुछ भला नहीं होता और इसका फायदा भी केवल 10-15% जो एक बड़े किसान हैं उनको ही मिलता है, क्योंकि बैंकों से जो कर्ज लेने वाला वर्ग है ये 10-15% बड़े किसान ही है। छोटे किसान तो बेचारे स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेते हैं और उन्हें वो चुकाना पड़ता है। तो ये सही नीति नहीं है, उसकी जगह पर होना ये चाहिए कि कोई सही तरीका निकाला जाए। आप देख रहे कि लगातार राज्य सरकार भी यही कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार आई कर्ज माफी कर दिया, कर्नाटक में भी लगभग लगभग यही किया गया, राजस्थान में भी यही किया गया कि सरकारें आती हैं कर्ज माफी कर देती हैं। अभी के चुनाव में भी आपने देखा कि कुछ पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम आते ही कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। तो ये बहुत ही टेम्परेरी रिलीफ है और इसको लेकर के भी सिविल सर्विस में एग्जाम पूछे जा सकते हैं कि इसके माध्यम से किसानों का कितना भला हो सकता है, क्या सही उपाय किए जाने चाहिए। मित्रों, ये कुछ खबरें थी। आइए अब मैं चुनाव परिणाम और उस पर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर डालते हैं, हालांकि वक्त बहुत कम रह गया है। परिणाम आपको मालूम है अभी जो आए हुए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले साल से ये चर्चा बहुत तेजी से चली है और सिविल सर्विस से पूछा भी जाने लगा है कि बात चल रही कि हम राज्यों के चुनाव यानी कि विधानसभा, जैसे कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा के चुनाव जो अगले साल आप यूं कह लीजिए कि अप्रैल में होने चाहिए, अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे, इनको एक साथ कराएं। जैसे अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में चुनाव हुए हैं, अगर लोकसभा के साथ ये चुनाव हो जाते तो उसमें खर्चा नहीं होता, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रहा होता, तो उसके लिए ढेर सारी अपनी अपनी दलीलें दी जाती हैं। यहां देखिए कि एक दलील जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जो चुनाव हुए हैं इनके परिणाम को देखिए तो इसमें पॉलिटी ढूंढिए आप, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी। पॉलिटिक्स अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है और पॉलिटी अलग चीज, या यूं कह लीजिए कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है। अब आप देखिए कि अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें तो हिंदी बेल्ट में तीनों राज्यों में लगभग लगभग बीजेपी पराजय की स्थिति में रही और कांग्रेस सत्ता में आ गई, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तेलंगाना में आप तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसे टीआरएस के नाम से जानते हैं आप, वो सत्ता में आई है, और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में आई है, तो वहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ। तो यहां आपको एक सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा, और सिनेरियो ये दिखाई दे रहा होगा कि केंद्र और राज्यों में जरूरी नहीं कि एक सी ही सत्ताएं हों। तेलंगाना में जो पार्टी आई है वो केवल तेलंगाना तक सीमित है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसी तरह से मिजो नेशनल फ्रंट भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, और यहां दूसरी पार्टी बिल्कुल साफ है, मतलब दूसरी पार्टी जिसमें हम बड़ी पार्टी कह लें कांग्रेस और बीजेपी, उनकी उपस्थिति तो है लेकिन नहीं के बराबर है। इसका मतलब है कि स्टेट में लगातार रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो रही है। चलिए, बाकी इधर तीन जो राज्य हैं उनमें कांग्रेस और बीजेपी अभी भी बहुत मायने रखती हैं, लेकिन इनकी भी संख्या कम है। अगर आप देखें तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, तो इनका जो अस्तित्व है, खासकर जो एक प्रभावशाली अस्तित्व है, वो राज्यों तक सीमित है। तो ये राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं, लेकिन जब केंद्र के चुनाव होंगे तब क्या होगा? केंद्र के जब चुनाव होंगे तो पता लगा कि जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, अभी अगर हम मान लें तो ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं, तो ये सबसे बड़ी पार्टियां अच्छी खासी सीट तो जीत जाएंगी, लेकिन राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं चूंकि उनकी कमांड है तो उन राज्यों से वो उतनी सीट नहीं ले पाएंगी कि वो बहुमत के आधार पर सरकार बना सके। इसका मतलब भी हुआ, तो क्या ये माना जाए कि ये जो सिनेरियो है, अभी के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अब केंद्र में एक प्रकार से गठबंधन सरकार का युग आ गया है। लेकिन इसकी एक दूसरी बात भी है कि अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी इन तीनों राज्यों में कोई गठबंधन नहीं किए थे, तीनों ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलताएं कांग्रेस को मिली हैं। तो ठीक है, ये 3-4-5 राज्य तो कुछ ऐसे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में वो स्थिति नहीं है, और खासकर अभी जब अप्रैल मई में चुनाव होंगे तो शायद हमें यह देखने को मिले कि राज्यों में गठबंधन किए जा रहे हैं, तो उस गठबंधन का प्रभाव ये होगा कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी जो बड़ी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं शायद ही पूर्ण बहुमत से आ सके। तो गठबंधन सरकार के युग में शायद हम प्रवेश कर चुके हैं, ये पहला प्रश्न है। मित्रों प्रश्न कुछ और भी खड़े होते हैं, लेकिन चूंकि अब वक्त नहीं रह गया है इसलिए अब मुझे अपने डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन जो और कुछ सवाल रह गए हैं उन पर हो सका तो हम लोग कल बातें करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं, विशाल वाजपेयी, संजय कुमार, सुनील सिंह कासगंज उत्तर प्रदेश से और संजय कुमार पटना से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।